नमस्कार भारत, तारीख 12 फरवरी दिन रविवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जजों पर साधा निशाना, कहा कि अमरीकी न्याय व्यवस्था चौपट। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में पड़े 63% वोट, अगले चरण के लिए मुलायम उतरे शिवपाल के पक्ष में।
नेताजी की और अखिलेश जी का कोई लड़ाई नहीं है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ और ना होगा।
लाठी मारे पानी नहीं फटता है।
न्यूज मेकर में मिली पद्मश्री से सम्मानित ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शेखर नाइक से।
मुझे बहुत खुशी होता है क्योंकि विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी के साथ मुझे भी पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। हर एक विजुअली इम्पेयर्ड क्या सोचता है कि अरे यार मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जजों पर ताजा हमला करते हुए कहा है कि अमरीकी न्याय व्यवस्था चौपट हो रही है। ट्रंप के 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आगमन पर रोक लगाने के एग्जीक्यूटिव आदेश पर अदालतों ने रोक लगा दी थी। एक ट्वीट में ट्रंप ने एक अखबार के उस आंकलन का हवाला दिया है जिसके मुताबिक यात्रा प्रतिबंधों पर रोक के बाद अमेरिका आने वाले प्रवासियों में 70% लोग इन्हीं 7 देशों के हैं। उन्होंने इसे बेहद खतरनाक कहा है। वाशिंगटन में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ट्रंप ने सोमवार को एक और नया एग्जीक्यूटिव आदेश लाने के संकेत भी दिए हैं। अमेरिका के एक इस्लामिक स्कूल ने सरकार के हिंसक चरमपंथ को रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक अभियान से खुद को अलग कर लिया है। स्कूल का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मुस्लिम विरोधी रुख ने देश में माहौल जहरीला कर दिया है। कैलिफोर्निया के बयान क्लेयरमोंट स्कूल के संस्थापक जिहाद तुर्क ने बीबीसी से कहा कि उनके संस्थान ने $8,000 की सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया है क्योंकि पैसा स्वीकार करने से स्कूल की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पर सवाल उठते। दक्षिण कोरिया के मीडिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने एक अज्ञात प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया की सेना के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि अभी तक इस मिसाइल के फ्लाइट पाथ की पहचान नहीं हुई है। उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे अमरीकी राष्ट्रपति से फ्लोरिडा में मिल रहे हैं। वाशिंगटन में वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया था कि उत्तर कोरिया से परमाणु खतरा शीर्ष प्राथमिकता है। उत्तर कोरिया ने हाल के महीनों में कई बार मिसाइल परीक्षण किए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। हिंसक झड़पों के कुछ घंटे बाद बगदाद के अति सुरक्षित इलाके ग्रीन जोन में कई रॉकेट भी दागे गए हैं। अभी ग्रीन जोन में रॉकेट हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले एक रैली में शामिल 10,000 प्रदर्शनकारियों ने सरकार के भ्रष्टाचार की आलोचना की और चुनाव सुधारों की मांग की। प्रदर्शन में शामिल इस व्यक्ति का कहना है, हम चुनाव आयोग में बदलाव की मांग करते हैं। ये आयोग भ्रष्ट है और इसका गठन भी भ्रष्ट लोगों ने किया था। अगर वो इसे नहीं बदलते हैं तो हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो इसमें बदलाव नहीं करते। हम भविष्य में और कड़े कदम उठाएंगे और उन्हें अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे। बोलीविया में अधिकारियों ने देश के उत्तरी इलाके में फसलों पर रसायन का छिड़काव शुरू कर दिया है। यहां अर्जेंटीना से आए टिड्डियों के दल की वजह से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। टिड्डियों के फसलों पर हमले के बाद बोलीविया की सरकार ने इस इलाके में आपातकाल लगा दिया है। सबसे पहले जनवरी में देखी गई ये टिड्डियां सांता क्रूज प्रांत में हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद कर चुकी हैं। शुक्रवार को प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने कहा है कि यह पहली बार है जब बोलीविया में ये टिड्डियां देखी गई है। हालांकि पड़ोसी देश अर्जेंटीना में ये 1920 के बाद से ही देखी जाती रही हैं। बोलीविया की सरकार ने अर्जेंटीना से मदद भी मांगी है। दक्षिण सूडान में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति साल्वा कीर की कड़ी आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
सुप्रभात। बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में आपने दिलनवाज पाशा से सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जजों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था चौपट हो गई है। ये एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा, जिसके मुताबिक यात्रा प्रतिबंधों पर रोक के बाद अमेरिका आने वाले प्रवासियों में 70% लोग इन्हीं 7 देशों के हैं और ट्रंप ने इन्हें बेहद खतरनाक कहा है। सीधे कार्यक्रम में हम चल रहे हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश जी, एक बार फिर से जजों पर निशाना साधा। पहले उन्होंने कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित फैसला है, तो अपील अदालत के फैसले के बाद ट्रंप किस योजना पर आखिरकार काम कर रहे हैं?
देखिए, उनकी तरफ से जो बयान आया है, कल एयरफोर्स वन पर कुछ पत्रकारों से वो बात कर रहे थे जब वो फ्लोरिडा जा रहे थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ये भी सोच रहे हैं कि एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फिर से दोबारा से लिखे, जो पहले ही ऑर्डर के साथ में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इशारा किया कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें काफी देर लगती है और वो एक तरह से जल्द लागू करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि सोमवार या मंगलवार तक हो सकता है कि हम कोई नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले आए। वहीं उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं रायन स्प्रीवस, उन्होंने इशारा ये भी किया कि सुप्रीम कोर्ट भी हम जा सकते हैं। तो वो सारे विकल्प वो कह रहे हैं खुले रखेंगे, लेकिन खुद ट्रंप की तरफ से इशारा यही आया है कि वो एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर गौर कर रहे हैं सोमवार या मंगलवार तक। और इस बीच में 9th सर्किट कोर्ट, जहां पर ये फैसला आया था, वहां पर एक जज ने आपस में ही कहा है कि एक वोट करने की जरूरत है कि अगर जरूरत पड़े तो हम लोग क्या इस पूरे मामले की जो मेरिट पर कि इसमें कितना दम है उस पर सारे फुल बेंच यानी 11 जजों के बेंच पर हम इसको सुनवाई करें कि ये जो 3 जजों ने जो आदेश दिया था वो कहां तक सही है और इसमें कितना दम है इस पूरे मामले।
ब्रजेश, तो ये माना जाए कि ये जो मामला है ट्रंप ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया।
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चीज मायने रखती है हमेशा और वो है जीत, चाहे वो किसी कीमत पर आए। और वो अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे ये, भले ही उसके लिए उन्हें जिस तरह अगर कई बार जो जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि यहाँ फैक्ट्स के साथ जो सच्चे जो फैक्ट्स थे उसके साथ भी अगर थोड़ा तोड़ना मरोड़ना पड़ा, लेकिन उनको जीत हर हाल में चाहिए और इसको वो एक निजी तौर पर एक हार की तौर पर तो देख ही रहे हैं। दूसरी चीज ये वो ये देख रहे हैं कि चुनाव में उनका ये बहुत सबसे बड़ा वादा था और उसको उन्होंने लागू करने की कोशिश की और उसमें जो अड़चनें आ रही हैं और उसमें जो रुकावट आएगी तो वो उसकी उनकी कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा। इसलिए भी वो इस पर अब उनका जो गुस्सा देख रहे हैं या इसमें हर हाल में जीतने की जो कोशिश दिख रही है उसकी वजह वो भी है।
संक्षेप में, इस तरह की खबरें आ रही है कि कुछ लोगों की धरपकड़ हो रही है, मैक्सिको के लोगों की।
जी हाँ, खासतौर से लातिनी अमरीकी देशों से जो यहाँ पर लोग हैं, बरसों से रह रहे हैं, लेकिन उनमें से काफी बड़ी तादाद है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। उसमें काफी एक खौफ का माहौल आ गया है कि शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और अटलांटा, इन जगह काफी अचानक से जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं वो सक्रिय हो गए। मैं मेरीलैंड में रहता हूँ, यहाँ पर बहुत जबरदस्त अफवाहें आ रही हैं कि यहाँ पर जो आसपास में गैर कानूनी तौर से मतलब बगैर दस्तावेज के लोग रह रहे हैं उनके साथ उनको पकड़ के और तुरंत डिपोर्ट किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर गंभीर चिंता जताई है और जो कांग्रेस में हिस्पैनिक कॉकस है उन्होंने कहा है, जो आईस के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसके जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की, फॉरेन मीटिंग की मांग की है। लोगों में इस तरह की घबराहट डर है कि हो सकता है सोमवार को ये बात हो रही है कि स्कूल ना जाए, भेजी जाए बच्चों को, लोग काम पर ना जाए जो लोग यहाँ बरसों से बगैर।
तो एक तरह का डर का थोड़ा सा एक खौफ का माहौल है। ब्रजेश उपाध्याय,
नहीं बहुत ज्यादा खौफ का माहौल है
जी। ब्रजेश उपाध्याय बहुत बहुत शुक्रिया वॉशिंगटन से सीधे इस कार्यक्रम नमस्कार भारत में शामिल होने के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान हुआ था और इस पर मौजूद 800 से ज्यादा उम्मीदवारों को लेकर मतदाताओं का फैसला वोटिंग मशीन में दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अभी 6 और चरणों के लिए वोट डाले जाने हैं। सियासी रस्साकशी जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम पेश किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में समाजवादी पार्टी के दावों पर सवालिया निशान लगाया। क्या कुछ घटा, चुनावी हलचल क्या है, वात्सल्य राय से सुनते हैं।
उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के मतदाताओं ने पहले चरण की वोटिंग के दौरान जो उत्साह दिखाया उसकी तारीफ चुनाव आयोग ने भी की। चुनाव आयोग के अधिकारी मतदान खत्म होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और बताया,
पार्टिसिपेशन ऑफ द वोटर्स हैज बीन एग्जेम्पलरी एज द रिपोर्ट्स आर कमिंग इन।
ये थे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर विजय देव, जो बता रहे थे कि मतदाताओं की भागीदारी अच्छी रही है। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 63% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। ये संख्या अभी बढ़ रही है। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा मतदाता वोट डालने निकले। हर पार्टी ने मतदाताओं के उत्साह के अपने पक्ष में होने का दावा किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का 10 सूत्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम पेश करते वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि मतदाताओं का रुझान गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। गठबंधन के साझा कार्यक्रम में युवाओं को फ्री स्मार्टफोन देने, किसानों को कर्ज में राहत देने, 1 करोड़ गरीब परिवारों को 1,000 रुपए की मासिक पेंशन देने और महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने जैसे वादे किए गए हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने गठबंधन पर सवाल उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया।
बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल होना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जमीन सरक गई है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसी से कुछ छीन नहीं रही है। छीनने का डर क्यों है किसी को? हम तो केवल सरकार में जैसे थे वैसे ही आना चाहते हैं।
वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव नतीजों से प्रधानमंत्री मोदी को झटका लगेगा, इसलिए वो घबरा रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को जो काम करने चाहिए मोदी वो नहीं करते हैं।
अब मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीजें वो अपने फ्री टाइम में करें, शाम को करें, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल। इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं।
तीखे तेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के नारे काम बोलता है पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
कितना गैर जिम्मेवार इनका कारनामा रहा है, हर चीज में गैर जिम्मेवार। भाइयों बहनों, ऐसे गैर जिम्मेवार रवैया वाले लोग कभी भी जनता जनार्दन का भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं, आपका काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं।
गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के दावों पर सवालिया निशान बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी लगाया। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला अभी थमता नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो गया है, लेकिन अभी 6 और चरण में मतदान होना है और सभी राजनीतिक दलों की कोशिश उन क्षेत्रों के वोटरों के सामने खुद को सर्वश्रेष्ठ विकल्प के तौर पर पेश करने की है।
वात्सल्य राय की रिपोर्ट हम सुन रहे थे और हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव फैजाबाद में हैं और फैजाबाद की आबो हवा से वहां पर पहुंच चुके हैं। नितिन, कल जो मौजूदा मतदान हुआ 63%, क्या संदेश माना जाए कि लोग इतने क्यों निकल रहे हैं?
मोनाल, इस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के असेसमेंट हो रहे हैं, लेकिन मेरी देर रात तमाम लोगों से बात हो रही है जो जर्नलिस्ट भी हैं और कुछ लोग जो सरकारी तंत्र में भी रहे हैं, इस पार्ट का इसका हिस्सा है पूरे प्रोसेस का। दो ही सूरत लोग कहते हैं निकलती है इस तरह की, जब इस तरह का अच्छा मतदान होता है। पहली तो ये कि एक एंटी इनकम्बेंसी कहीं वेव तो नहीं है कि तमाम लोग घरों से निकल के आए, वो शायद कुछ बदलाव चाहते हैं। और दूसरा जो सूरत है वो ये है कि अगर इतना अच्छा मतदान हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो मौजूदा सिस्टम है उसके लिए बाहर निकल आए हों। तो ये इस तरह के दो सूरत निकलती है आम तौर पर देखा गया है पिछले तमाम जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोगों को उम्मीद थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर ज्यादा मतदान होगा तो तो एक तरह से लहर जो है, ज्यादा मतदान की भी एक तरह से लहर होती है, एक ज्यादा मतदान का भी की भी फिजा होती है, वो ऊपर से नीचे तक जो है बहकर आती है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, पहला चरण पश्चिमी में है, ऊपर अगर आप यूपी का नक्शा देखें तो वहां से फिर वो मध्य की तरफ आता है, फिर नीचे बहता है, जैसे गंगा यमुना नदियां बहती हैं, उसी तरह से मतदान का सिलसिला फेजेस का आएगा। तो ऐसी उम्मीद अब लगाई जा रही है कि 60% से ज्यादा मतदान लगभग सभी चरण में हो।
नितिन, फैजाबाद में क्या माहौल है?
फैजाबाद जो है बड़ी दिलचस्प जगह है विधानसभा चुनाव के लिए, खासतौर से 5 सीटें आती हैं इस एरिया में, जिसमें से एक शहर की सीट है और कुछ रूरल सीट्स हैं बाहर की, ग्रामीण क्षेत्रों की, जैसे मिल्कीपुर वगैरह ये सब इलाके हैं। दिलचस्प बात यह है कि फैजाबाद से सटा अयोध्या है,
संवेदनशील इलाका
जी, और अयोध्या में आपको बताऊं कि वहां पर भी एक सीट है जहां पर एक अभी समाजवादी पार्टी के जो MLA हैं पांडे, वो अखिलेश गवर्नमेंट में मंत्री भी थे। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह कि फैजाबाद में इस बार BSP ने, बहुजन समाज पार्टी ने, एक मुस्लिम कैंडिडेट को अयोध्या से फैजाबाद के बगल चुनाव में उतारा है, और ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि ये ऐसी सीट रही है जहां पर हमेशा BJP जीतती रही है, और फैजाबाद में भी कुछ ऐसा है कि आधे से ज्यादा कैंडिडेट नए उतारे गए।
विनीत, माफ कीजिएगा, नितिन श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम आज बात कर रहे हैं चुनावों के बाद वहां पर क्या चल रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव के समर्थन में जसवंत नगर में सभा की। अब तक वो अपने बेटे व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थन में उन्होंने कोई सभा नहीं की है। जुबैर अहमद कल जसवंत नगर में मौजूद थे।
जब जब जो वादा किया है तो पूरा किया, ये सही है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, नौजवानों को देने का काम किया गया है, समाजवादी पार्टी।
इस समय मैं यशवंत नगर चुनावी क्षेत्र में हूँ, जो शिवपाल यादव का चुनावी क्षेत्र है। यहीं से वो 1996 से जीतते आए हैं और इस बार भी यहाँ से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। पहली बार मुलायम सिंह यादव किसी चुनावी सभा में बोलने आए इस दफ़ा, और वो आए तो शिवपाल यादव यानी अपने भाई की सभा में आए। अपने बेटे अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सभाओं में अब तक उनकी उपस्थिति नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो अब आगे भी चुनावी सभाओं में हिस्सा लेंगे, वहाँ भाषण देंगे। तो उनकी भाषण के बाद लोगों ने क्या राय दी, आइए हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं। अखिलेश जी और शिवपाल चाचा भतीजे में जो खटपट चल रही है, नेताजी ने क्या पैगाम दिया आज के बारे में?
नेताजी का ये पैगाम है कि पार्टी में कोई विद्रोह नहीं है, कोई नेताजी की और अखिलेश जी का कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ और ना होगा।
मुलायम सिंह भी नहीं थे?
मुलायम सिंह से अच्छे काम किए अखिलेश जी ने।
उन्हें युवाओं को देख के अखिलेश को कहा, हाँ, पार्टी मेरी अब बूढ़ी नहीं है, पार्टी मेरी जवान है। तो वो अखिलेश के लिए कहा है कि युवाओं का है देश और देश का है अखिलेश।
अपने बेटे के इसमें नहीं गए, ये क्या दर्शाता है?
ये दर्शा ये था कि भाई पहले, बेटा शादी बाद में हुई, बेटा बाद में हुई, भाई उनका भाई होता है।
मतभेद कहीं
शादी करने के बाद में लड़के तो काफ़ी हो जाते, लेकिन भाई नहीं मिलता है।
आप क्या क्या सवाल किया?
सवाल ये है कि चाचा के इसमें तो आ गए चुनावी मुहिम में, बेटे के इसमें नहीं है।
किया उन्होंने चुनाव का प्रचार आगे से, आज सभी को बोला है, अगल बगल के सभी प्रत्याशियों के बोला है शिवपाल जी को जिताएं, और क्षेत्र से संबंधित जो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको सभी को भारी बहुमत से जिताएं।
ये बताइए कि क्या ये जो परिवार में झगड़ा हुआ है, ये चुनाव में अगर पार्टी जीतती है उसके बाद उभर के फिर से आएगा?
कोई झगड़ा नहीं, ना था, ना आज है, ना आगे रहेगा।
न झगड़ा था, न झगड़ा है और न रहेगा। जसवंत नगर जो कि विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पर शिवपाल के प्रचार में मुलायम सिंह यादव उतरे थे, वहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी जुबैर अहमद। अखबारों का जिक्र करते हैं, दिलनवाज पाशा मौजूद हैं। दिलनवाज, आज के अखबार चुनाव 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 परिणाम और वोटिंग परसेंटेज से भरे पड़े।
जी बिल्कुल, अमर उजाला लिखता है यूपी पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग, 15 जिलों की 73 सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा मतदान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये कल वोटिंग हुई है, कोई बड़ी हिंसा की वारदात सामने नहीं आई और अखबार इसे शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड मतदान लिख रहे हैं। एक खबर द इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है जिसके मुताबिक बिजनौर में हुआ एक कत्ल का मामला वहां चुनावों पर असर डाल सकता है। दरअसल एक जाट समुदाय के युवक की हत्या कर दी गई है और इसको लेकर के वहां पर माहौल काफ़ी जो चुनावी माहौल है बदल गया है और अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसका असर जिले की कई सीटों पर पड़ सकता है। इसके अलावा जिक्र एक संडे टाइम्स की खबर का जिसके मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि उन्हें दिया गया सुप्रीम कोर्ट का नोटिस बताता है कि न्यायपालिका में जो दलित जज हैं उनके प्रति भेदभाव है। और द हिंदू में आज द हिंदू के कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने कहा है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ये एक तरफ हाईकोर्ट के जो जज हैं जिन्हें कंटेम्प्ट नोटिस दिया गया है उनका बयान है और एक तरफ केंद्रीय कानून मंत्री का बयान है। मोहनलाल जी, हाल ही में एक क्लिक घोटाला हुआ था, हम जो इंटरनेट पर क्लिक करते हैं, किसी ने दिमाग लगाया उससे लोगों को फंसा के 3700 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और आज संडे ना भारत टाइम्स बता रहा है कि ऐसा ही एक और घोटाला 500 करोड़ रुपए का नोएडा की एक कंपनी ने किया है और पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है।
वहीं लोगों को एक काम करना चाहिए, घोटालों की जो राशि होती है ना उसके जीरो लगा के देखने चाहिए कि आखिरकार जीरो कितने लगते हैं।
और मैं तो इस खबर के बाद मैंने कई बार सोचा कि ऐसा क्यों लोग लालच में आ जाते हैं, कोई क्लिक करने के पैसे क्यों देगा और कैसे कमाएगा। और अभी एक दो दिन पहले हमने जिक्र किया था गुड़गांव में एक मणप्पुरम गोल्ड में कि जो फर्म है उसमें लूट हुई थी, 32 किलो सोना ले गए थे। 8 पढ़े लिखे नौजवानों को पुलिस ने इस मामले में पकड़ा है। और एक खबर आज जनसत्ता के पहले पन्ने पर है, बड़ी दुखदाई खबर है। जयपुर में 54 बच्चों का यौन शोषण उन्हीं के शिक्षक ने किया, वीडियो बनाकर वायरल कर दी और ये इस शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी मोहनलाल शर्मा,
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। और यहीं पर मैं bbchindi.com का जिक्र कर दूं जहां पर दो खबरें जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अगर ये सोचिए कि अगर आपकी एक पुरानी ड्रेस शादी वाली खो जाए तो अगर वो मिल जाए 150 साल पुरानी हो और अगर आपको वापस मिल जाए तो कैसा लगेगा, ये खबर हमारे bbchindi.com पर है। और दूसरे विश्वयुद्ध के एक बम ने एक शहर को खाली कराया है, ये bbchindi.com पर दो रोचक खबरें हैं जिसको कि आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं। कार्यक्रम में एक बार हम फिर से भारत पर लौट रहे हैं और तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं। तमिलनाडु में AIADMK के ओ पनीरसेल्वम और शशिकला के बीच रस्साकशी जारी है। पनीरसेल्वम का समर्थन धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहीं शशिकला राज्यपाल को संकेत देने की कोशिश में है कि वो ज्यादा इंतजार को तैयार नहीं है। शशिकला ने अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात की है। इस खबर पर लगातार नजर रख रहे पत्रकार इमरान कुरैशी से मैंने पूछा कि तमिलनाडु की राजनीति में चल क्या रहा है, कौन किसके पाले में जा रहा है।
स्थिति ऐसी है कि अभी तक राज्यपाल की तरफ से कोई न्योता नहीं गया है शशिकला को या पन्नीरसेल्वम को, मगर एक अहम कल का डेवलपमेंट ये था कि 3 संसद सदस्य जो अब तक शशिकला के साथ थे वो पन्नीरसेल्वम के साथ आ गए हैं और उसके अलावा 3 मंत्री, शिक्षा मंत्री पांडेराजन, ग्रामीण उद्योग मंत्री बेंजामिन और जयकुमार जो फिशरीज मिनिस्टर हैं, वो 3 मंत्री भी पन्नीरसेल्वम के साथ आ गए हैं। और उसके फौरन बाद कल शशिकला ने MLA से उनके विधायकों से मिलने गई, मगर जाने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से संबोधित किया।
तो जब अपने विधायकों को अपने समर्थकों को शशिकला संबोधित कर रही थी तो उन्होंने कहा क्या?
उन्होंने कहा कि हम इसलिए सहनशील हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र की उचित प्रक्रियाओं का पालन होगा। मगर उसके बाद एक और बात कही उन्होंने जो उसके कुछ अलग ही मायने निकाल सकते हैं कि हम बहुत देर सहनशील नहीं रह पाएंगे, हम वो करेंगे जो करना चाहिए। मगर उन्होंने ये नहीं समझाया कि वो क्या करेंगे, क्या वो न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो नहीं समझाया है।
तो इसका मतलब ये है कि क्या आने वाले चंद दिनों में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर कोई फैसला नहीं होगा?
नहीं, आने वाले दिनों में तो नहीं हो सकता है क्योंकि सोमवार को आय से अधिक संपत्ति का मामला जो सुप्रीम कोर्ट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला था, वो शायद सोमवार को नहीं आएगा क्योंकि उसमें से वो 2 जज की बेंच है, उसमें से 1 जज छुट्टी पे है सोमवार को। क्या वो मंगलवार को आएगा, बुधवार को आएगा, क्या नहीं आएगा, कब आएगा, वो किसी को पता नहीं है।
तो इसका मतलब ये भी है कि राजनीतिक अस्थिरता के बादल मंडराते रहेंगे तमिलनाडु पर।
वो वो तो चलता ही होगा। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि शशिकला के पास से जो विधायक समर्थन कर रहे हैं, अभी कल में जो हुआ है कल, उस तरीके से थोड़े और लोग भी पन्नीरसेल्वम की तरफ आ सकते हैं।
तमिलनाडु में कौन किसके पाले में जा रहा है, बता रहे थे हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब न्यूज़मेकर्स, इस हफ्ते के न्यूज़मेकर हैं शेखर नाइक, जिन्हें की पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। उनसे बात कर रही हैं इंदु पांडे।
क्रिकेट को यूं तो सब लोग पहचानते हैं, लेकिन एक क्रिकेट ऐसा भी है जिसे सब लोग महसूस करते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन शेखर नाइक हैं इस बार हमारे बीबीसी न्यूज़मेकर्स।
नमस्कार, मेरा नाम शेखर नाइक है।
तो आज हम जानेंगे उन्हीं की बातें। शेखर आम क्रिकेटर नहीं है, बल्कि बहुत ही स्पेशल है। कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले शेखर इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 2012 का T20 वर्ल्ड कप और 2014 का वर्ल्ड कप जीता था। उन्हें इस बार पद्मश्री देने का ऐलान किया गया है, और शेखर नाइक पद्म सम्मान पाने वाले देश के पहले ब्लाइंड क्रिकेटर हैं। ये अवार्ड ब्लाइंड क्रिकेट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है?
ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड भी क्रिकेट खेलते हैं करके पूरा इंडिया, पूरा भारत देश को पता चलेगा। तो उससे हम जो ब्लाइंड क्रिकेट का सपोर्ट के लिए बहुत सारा लोग आएंगे, और जैसे दूसरे क्रिकेट क्लब्स, एकेडमीज वगैरह हमको भी पहचानेगा, शायद हमारा सपोर्ट के लिए आएंगे, वो भी एक फायदा है।
बचपन में ही आंखों की रोशनी चली गई थी शेखर नाइक की। अपनी इस शारीरिक कमजोरी पर काबू पाते हुए शेखर ने एक सक्सेसफुल क्रिकेटर का मुकाम हासिल किया और क्रिकेट को एज ए चैलेंज लिया।
आप इसी में कुछ करना, अचीव करना करके मम्मी बोला, तो मम्मी बोल के एक साल डेढ़ साल के बाद मम्मी का भी डेथ हो गया, तो मैं क्रिकेट को एज ए चैलेंज, मैं इसमें कुछ बनना है करके।
और इस तरह से बैट एंड बॉल से लिखी गई शेखर की तकदीर। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हर बॉल अपने आप में एक लक होती है। शेखर ने कई कमाल कर दिखाए। सन 2000 में शेखर ने एक टूर्नामेंट में सिर्फ 46 गेंदों पर 136 रन बना करके सबको चौंका दिया था, और उन्हें कर्नाटक टीम में तब एंट्री मिल गई। और एक टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शेखर ने 249 रनों की पारी खेली, जिसके बाद तो सारे रास्ते मानो खुलते चले गए।
तो ऐसे ही क्रिकेट में हमेशा एवरी बॉल एक लक होता है, उसी में आउट भी हो सकता है, उसी को छक्का भी मार सकता है। सो वो एवरी बॉल इज ए लाइफ।
और उसी बॉल से एक हिस्ट्री बना दी शेखर ने। अच्छा शेखर, ये बताइए कि आप विराट कोहली के साथ ही जाएंगे अपना पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए?
तो सही में बहुत मुझे बहुत खुशी होता है, क्योंकि जैसे विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी के साथ मुझे भी पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। हर एक विजुअली इम्पेयर्ड क्या सोचता है कि अरे यार मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली मैंने कुछ अचीवमेंट किया बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कुछ है जो हमेशा छूट जाता है। तो शेखर, क्या है ऐसी चीज जो आपको अभी भी चाहिए? पद्मश्री अवार्ड तो आपको मिल गया,
आपको पता ही है, जैसे ऑफ कोर्स ऑल डिजेबल सभी पीपल रहेंगे, वो ऑलमोस्ट इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से ही रहते हैं, कोई नेशनल इंटरनेशनल पे जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब देना है करके मेरा एक सरकार से रिक्वेस्ट है। नॉर्मल क्रिकेट में अगर आप खाली रणजी खेलो तो मान जाओ भाई कि आपका SBI केनरा बैंक में, स्टेट बैंक कोई में करना नौकरी मिल जाएगा। तो मैंने 2002 से लेकर अब तक 2016 तक जो इंडियन टीम में खेला करीबन 14 साल के लिए, तो मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं है। तो मेरे जैसे हजारों लोग हैं, मैं खाली मेरा अकेला का नहीं बोल रहा हूँ, तो सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और जब वो देश के लिए हम और कुछ कर पाएंगे। मैडम,
भारत में ब्लाइंड क्रिकेट की फ्यूचर को लेकर के उनका कहना है?
मैडम, फ्यूचर में मैं वही बोला ना, मेरा जैसे बहुत सारा क्रिकेटर्स है, तो उनको मैं आइडेंटिफाई करना हर स्टेट में, ये तो मेरा बहुत बड़ा सपना है। मुझे एक एक महीना 20-20 दिन का कोचिंग कैंप्स करना और बहुत सारा क्रिकेटर्स को आगे लेके आना है।
इसलिए उनकी ख्वाहिश यही है कि जल्दी से मिल जाए एक नौकरी।
जल्दी से मिल जाए नौकरी, ये ख्वाहिश है इनकी। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जजों पर ताजा हमला करते हुए कहा है कि अमरीकी न्याय व्यवस्था चौपट हो गई है। अमेरिका के एक इस्लामिक स्कूल ने सरकार के हिंसक चरमपंथ को रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक अभियान से खुद को अलग कर लिया है। दक्षिण कोरिया के मीडिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने एक अज्ञात प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इराक की राजधानी बगदाद में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। वो 10 खबरें कहीं हफ्ते में आपसे मिस तो नहीं हो गई, इसे पढ़ें bbchindi.com पर। आइए मोहनलाल शर्मा को अगले कार्यक्रम तक यानी कि दिन भर तक विदा दें। राजेश चौहान के साथ नमस्कार।